नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।